समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जी हां, कोई भी चीज तभी अच्छी लगती है जब वो समय पर मिलती है। देर से मिली किसी भी चीज में कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है, इसलिए समय रहते सही बात, सही व्यवहार और सही कार्य जरूर करें। हर रोज सुख की प्रतीक्षा करने के बजाय छोटी छोटी खुशियों को अपने जीवन में जगह दें और उसकी कीमत समझें, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, जब मन कटुवाड़ी से आहट हो तो फिर बाद में कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन।
गुड मॉर्निंग लिसनर्स, अ वेरी हैप्पी ट्यूसडे टू यू ऑल। टाइम फॉर अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, सो स्टे विद अस एंड एंजॉय। वी बिगिन विद सम न्यूज हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi spoke to US President Joe Biden and discussed regional and global issues, including the situation in Ukraine. Mr. Modi received a telephone call from the US President yesterday. The Prime Minister conveyed his appreciation to President Biden's deep commitment towards the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership, which is based on shared values of democracy, rule of law, and strong people-to-people ties. Both leaders reviewed the significant progress in bilateral relations and highlighted that India-US partnerships aimed at benefiting the people of both countries as well as the entire humanity. Mr. Modi and President Biden also had a detailed exchange of views on a number of issues. While discussing the situation in Ukraine, Mr. Modi briefed President Biden on his recent visit to Ukraine. He reiterated India's consistent position in favor of dialogue and diplomacy and expressed full support for early return of peace and stability. The two leaders expressed their shared concern over the situation in Bangladesh. They emphasized the restoration of law and order and ensuring safety and security of the minorities, particularly the Hindus in Bangladesh. They also reiterated their commitment to further strengthen the cooperation in multilateral fora, including the Quad.
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा आज नई दिल्ली में भारत ब्राजील संयुक्त आयुक्त की 9वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री वियरा की यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि डॉ जयशंकर और श्री वियरा बताएंगे कि तीन देशों के समूह त्रोइका के रूप में किस तरह दोनों देश मिलकर पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन के प्रमुख परिणामों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। G20 के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील का कार्यकाल नवंबर 2024 तक का है। ब्राजील की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 त्रोइका में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्राजील की मेजबानी में इस वर्ष 18 और 19 नवंबर को रियो डी जनेरो में G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच बहुपक्षीय संबंधों की जड़ें उन मूल्यों में जो देश साझा करते हैं। ये भी कहा गया है कि विदेश मंत्री वियरा की यात्रा दोनों देशों के बीच 2006 में शुरू की गई रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने का अवसर प्रदान करेगी।
The nomination for the first phase of assembly elections in Jammu and Kashmir will end today. As many as 24 seats spread over 6 districts will go to polls in this phase on September 18. The scrutiny of nominations will take place tomorrow, while the last date for withdrawal of candidatures is August 30. Voting for the next two phases will be held on September 25 and October 1. The results will be announced on October 4. There are 87.09 lakh voters in Jammu and Kashmir, of which 44.46 lakh are male, 42.62 lakh are female, 3.71 lakh are first-time voters, and 20.7 lakh are young voters. Out of the 90 assembly constituencies in the Union Territory, 74 are general, 7 are reserved for SC candidates, and 9 for ST candidates.
चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज पहली बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार ये बैठक नई दिल्ली में होगी। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास और एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की पूर्व प्रोफेसर डॉ पद्मा श्रीवास्तव इस कार्यबल के सदस्यों में शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्यबल को 3 सप्ताह में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के अंदर अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
In Chhattisgarh, 25 Maoists have surrendered in Bijapur district. They surrendered before the district superintendent of police and DIG of CRPF yesterday. A total reward of 29 lakh rupees had been declared on these Maoists. Of these, a reward of 8 lakh rupees each was declared on 3 Maoists, 3 lakh rupees on 1 Maoist, and 1 lakh rupees each on 2 other Maoists. The superintendent of police said that the surrendered Maoists have been provided an amount of 25,000 rupees each under the rehabilitation policy of the Chhattisgarh government.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन इस महीने की 30 तारीख को रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दी। श्री सोरेन ने उनके साथ कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हाल ही में चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था।
The World Health Organization, WHO, launched a 6-month global strategic and response plan to stop the deadly outbreak of mpox. This plan aims to curtail human-to-human transmission of mpox through coordinated global, regional and national efforts. Starting from September 2024 to February 2025, and envisions $135 million funding. The plan includes strategic vaccination efforts for people at highest risk to interrupt transmission chains. This includes close contacts of recent cases and healthcare workers. Further, the WHO outlined that at the global level, the emphasis is on leadership, timely evidence-based guidance, and access to medical countermeasures for the most at-risk groups in affected countries. According to WHO, globally since 2022, more than 99,000 cases and 208 deaths from 116 countries have been reported due to mpox.
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम 4 अक्टूबर को दुबई में न्यूजीलैंड के विरुद्ध मैच से अपना अभियान शुरू करेगी। इसके बाद 6 अक्टूबर को वहीं पर पाकिस्तान से भारतीय टीम का मुकाबला होगा। भारत का तीसरा मैच 9 अक्टूबर को दुबई में ही श्रीलंका के साथ होगा। समूह स्तर पर भारतीय टीम का अंतिम मुकाबला 13 अक्टूबर को शारजहां में पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। महिला टी20 विश्व कप का आयोजन पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन 2 सप्ताह पहले इसे संयुक्त अरब अमीरात में कराने का निर्णय लिया गया। इस प्रतियोगिता के 2 सेमीफाइनल मैच 17 और 18 अक्टूबर को दुबई और शारजहां में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मैच 20 अक्टूबर को दुबई में होगा। आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं सुभद्रा।
Yes, starting from news from Chennai, Tamil Nadu Green Energy Corporation Limited and industries with captive solar power plants in the state are at loggerheads over the former's latest instructions that new captive plants will be connected to the grid only if the indigenous solar panels are used and not if the imported modules are used. In a circular to all the industries with captive plants, stated that the union knew and Renewable Energy Ministry has made amendments to its 2017 order regarding the solar plant installation to ensure the quality of solar cells, solar modules used in solar power plants, in addition to promote Make in India mission. Bengaluru News Now, the Sri Krishna Janmashtami grand celebrations started in Udupi Sri Krishna Math in Karnataka. The celebrations will conclude with a Sri Krishna Lilotsava or Vittal Pindi. The Temple Trust prepares 100 types of laddus as offerings to the Lord. The same is distributed to the disciples who are on fast. As part of Lilotsava, the curd and butter pots tied at a height are broken by those dressed as Gopalas. An idol of Lord Sri Krishna made out of soil is taken in a procession and immersed in the holy lake called Madhva Sarovara within the temple premises. Various folk artists dressed as tiger perform during the Lotsava. Special puja ceremony is organized on this occasion and the Sri Krishna idol is adorned with jewelry, flowers and other religious signs. Moving over to Hyderabad in Telangana, a total of 135 youngsters who got through civil's preliminary exams have been presented 1 lakh rupees assistance under the Rajiv Gandhi Civil's Abhaya Hastam program. The Singareni Coal Collieries have taken up the program under its CSR program. Chief Minister A. Revanth Reddy, Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka and Ministera have been presented the cheques last evening at a program in Hyderabad. Speaking on the occasion, the Chief Minister said the program will instill confidence among the youth that the government will support them to excel in the selection process of civil exams. He also said the government will fill all the posts of vice chancellors and professors of all the universities in 10 to 15 days. Emphasizing the need for skills among youngsters, he said, Young India Skills University is being set up to enhance employment opportunities among youth. He said the government will be facilitator and 20,000 youths will be trained in the university every year. He further said that Young India Sports University will start training from the next academic year onwards.
और आइए अब जानते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की खबरें. पहले दिल्ली की खबरें. दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी 1 सितंबर से राजधानी में आपका विधायक आपके द्वार अभियान की शुरुआत करेगी. दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ संदीप पाठक ने बताया कि आपका विधायक आपके द्वार अभियान के अंतर्गत विधायक मंडल और बूथ स्तरों पर सभाएं आयोजित की जाएंगी. इस दौरान जनता को सरकार के कामों से अवगत कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि श्री सिसोदिया की जारी पदयात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा. वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नए अभियान आपका विधायक आपके द्वार को पार्टी का नया शिगुफा बताया है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्ष से जनता से दूर रही है और इसका नतीजा लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी हार के तौर पर देखने को मिला है. श्री सचदेवा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की हार का एक मुख्य कारण पार्टी नेतृत्व में भ्रष्टाचार था. वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष नेवेंद्र यादव ने राजधानी में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकारों की निष्क्रियता और आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली में कानून व्यवस्था ठप है, जिस कारण शहर में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने लगभग 70 पेड़ों को बचाने के लिए अपने चौथे चरण के डिजाइन में बदलाव किया है. मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि चौथे चरण के निर्माण के लिए जनकपुरी पश्चिम और आरके आश्रम मार्ग के बीच निर्माणाधीन गलियारे के बीच लगभग 70 पेड़ों को काटा जाना था, लेकिन यहां मेट्रो ने चौथे चरण के डिजाइन में बदलाव किए हैं. और आइए अब जानते हैं मुंबई की खबरें. महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक ऐतिहासिक किले में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति कल ढह गई. मूर्ति के गिरने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का आकलन करने के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के अवसर पर मूर्ति का अनावरण किया गया था. मुंबई की पश्चिम लाइन का उपयोग करने वाले यात्रियों को आज और कल मध्यरात्रि से शुरू होने वाले 35 दिनों के यातायात अवरोध का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार ये व्यवधान गोरेगांव और कांदीवली के बीच छठी लाइन का विस्तार करने के लिए एक बड़े पैमाने पर परियोजना का हिस्सा है, जिससे ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ने और देरी होने की आशंका है। इन दिनों लगभग 140 उपनगरीय ट्रेनें रद्द कर दी जाएंगी और 50 सेवाओं में कटौती की जाएगी। WUR के अधिकारी ने बताया कि 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कोई अवरोध नहीं होगा, जिससे त्योहारों के दौरान ट्रेनें हमेशा की तरह चल सकेंगी। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने जर्मनी में नौकरी के इच्छुक महाराष्ट्र के युवाओं को जर्मन भाषा का प्रशिक्षण देने की पहल की है। मुंबई के एल्फिंस्टन टेक्निकल हाईस्कूल परिसर की क्षेत्रीय शिक्षा प्राधिकरण की प्रिंसिपल मनीषा पवार ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मुंबई में 15 स्थानों पर इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुश्री पवार ने कहा कि जर्मनी के बाडेन विटनबर्ग राज्य में लगभग 30 क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार जर्मनी को कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने जा रही है। आवश्यक जर्मन भाषा का प्रशिक्षण अब गोएथे संस्थान के माध्यम से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बाडेन विटनबर्ग राज्य और महाराष्ट्र सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत महाराष्ट्र के युवाओं को जर्मनी में जर्मन भाषा और कार्य संस्कृति का प्रशिक्षण मिलेगा। सुश्री पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पायलट आधार पर बाडेन विटनबर्ग राज्य को तुरंत 10,000 कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराएगी। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और अन्य क्षेत्रों में 30 पाठ्यक्रम तय किए गए हैं। इच्छुक युवा अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इस पहल के बारे में अधिक जानकारी maa.ac.in/germanyemployment लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कोलकाता की खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कल राज्य सचिवालय पर नबन्ना चलो मार्च उसने नहीं बुलाया है। भाजपा ने कहा है कि वह मार्च और आरजी कर मेडिकल पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने वाले हर आह्वान का समर्थन करती है। कांग्रेस ने भी कहा है कि वह न्याय के लिए राज्य में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करती है। पश्चिम बंगाल में समाज के सभी वर्गों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में द्वितीय वर्ष की पीजीटी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़े लोगों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। आज दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। बादल छाए रहने के साथ सामान्य बारिश होने के आसार हैं। वहीं कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 25 और 29 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।
गोइंग डाउन साउथ, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस एंड अ मैक्सिमम ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस।
और आइए अब जानते हैं इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
Yes, friends, a spiritual masterpiece materialized into reality as the esteemed Sri Harmandir Sahib Golden Temple was ceremonially inaugurated in Amritsar on this day in 1604. The holy book Guru Granth Sahib was also installed on the same day by Guru Arjan Dev.
27 अगस्त का इतिहास एक बड़े आविष्कार का इतिहास है, क्योंकि आज ही के दिन दुनिया को पहला जेट एयरक्राफ्ट मिला था। हाइकल नाम के जर्मन वैज्ञानिक ने इसे तैयार किया था।
Talking about jet aircraft, I'm going to talk about first balloon ascent. This happened in 1784. James Tytler made his first balloon ascent in Britain in a hot air balloon at Edinburgh, Scotland. It was called the Grand Edinburgh Fire Balloon.
1870 में भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना हुई थी।
1952 विज्ञान मंदिर इनॉग्रेटेड एट नजफगढ़ रोड न्यू दिल्ली एंड 1953 दिस डे अ सिनेमैटिक मास्टरपीस अ टाइमलेस फेवरेट ग्रेसेस द सिल्वर स्क्रीन एज द मूवी रोमन हॉलिडे मेक्स इट्स डेब्यू अ डिलाइटफुल फिल्म दैट फीचर्ड ऑड्रे हेपबर्न एंड ग्रेगरी पेक।
1976 में सेना की प्रथम महिला मेजर जनरल जी अली राम मिलिट्री नर्सिंग सेवा की निदेशक बनी थी।
1955 दिस डे द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मेड इट्स इनॉग्रल अपीयरेंस एंड इन 1964 द म्यूजिकल फिल्म मेरी पॉपिंस एन अडैप्टेशन ऑफ पीएल ट्रैवर्स बुक हैड इट्स वर्ल्ड प्रीमियर इन लॉस एंजेलिस। इट बिकेम अ डिज्नी क्लासिक स्पेशली नोटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जूली एंड्रूज हु वाज मेकिंग अ स्क्रीन डेब्यू एंड फ्रेंड्स। इन 1991 ऑल अमेरिकन रॉक बैंड पर्ल जैम रिलीज देयर डेब्यू एल्बम 10, which launches them to stardom and puts them in the forefront of the Seattle grunge movement.
और 1985 में नाइजीरिया में मेजर जनरल मोहम्मद बुहारी की सरकार का तख्ता पलट हो गया था। उनकी जगह जनरल इब्राहिम बाबनगिदा नए शासक बने थे और आज के दिन ही 1999 को सोनाली बनर्जी भारत की पहली महिला मरीन इंजीनियर बनी थी। और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। आज मुकेश चंद्र माथुर की पुण्यतिथि है। वे भारत में संगीत इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक थे। सुरों के बादशाह मुकेश ने अपना सफर 1941 में शुरू किया। निर्दोष फिल्म में मुकेश ने अदाकारी करने के साथ साथ गाने भी खुद गाए। इसके अलावा उन्होंने माशुका, आह, अनुराग और दुल्हन में भी बतौर अभिनेता काम किया। उन्होंने सबसे पहला गाना दिल ही बुझा हुआ है गाया था और मुकेश ने एक गायक के रूप में अपना पहला गाना 1945 में फिल्म पहली नजर में गाया। उस वक्त के सुपरस्टार माने जाने वाले मोतीलाल पर फिल्माया जाने वाला गाना दिल जलता है तो जलने दे हिट हुआ था। राज कपूर मुकेश की जोड़ी ने एक दूसरे की जरूरत बनकर सेल्यूलाइड के इतिहास में मिसाल कायम की और 1949 में इस जोड़ी ने ना जाने कितने अनगिनत यादगार गीत गाए, जैसे छोड़ गए बालम, जिंदा हूं इस तरह, रात अधेरी तू सवेरा, और इसके अलावा आवारा हूं मैं, मेरा जूता है जापानी, मेरे मन की गंगा। उनकी एक अलग प्रतिभा का उदाहरण है गीतों का। उन्हें जादूगर माना जाता है। उन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
After Hindi playback singer Mukesh, we remember a Carnatic musician, another Swaram maestro, T.N. Rajaratnam Pillai, who took birth this day in 1898. Besides the instrumental virtuosity, he was also an excellent singer and an actor. He was popularly called the Nadaswara Chakravarti, that meant the emperor of Nadaswaram. 1908, cricket hero Sir Donald Bradman was born. His monumental achievements on the field, including 29 centuries and a staggering average of 99.94, remains a testament to his unparalleled prowess and enduring influence. And friends, 1990 this day, 35-year-old American guitarist-songwriter Stevie Ray Vaughan dies in a helicopter crash near East Troy, Wisconsin, following a concert at the Alpine Valley Music Theater. This brilliant guitarist gave a new name to the traditional blues with his electric sound. It goes without saying that he had helped reignite interest in modern electric blues and brought it to mainstream. One tune to remember this great guitar god, The Sky.
The sky is crying. Can you see the tears roll down?
आज हिंदी फिल्मों के फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी की पुण्यतिथि है। ऋषिकेश मुखर्जी ने 1951 में फिल्म दो बीघा जमीन फिल्म में बिमल राय के सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। बिमल राय के साथ 6 साल तक काम करने के बाद उन्होंने 1957 में मुसाफिर फिल्म से अपने निर्देशन के करियर की शुरूआत की। उन्होंने अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद और सत्यकाम जैसी ऑफबीट फिल्मों का भी निर्देशन किया। ऋषिकेश मुखर्जी की अंतिम फिल्म 1998 की झूठ बोले कौवा काटे थी। उन्होंने टेलीविजन के लिए तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छांव, रिश्ते और उजाले की ओर जैसे धारावाहिक भी बनाए। उनकी सत्यकाम, आशीर्वाद, चुपके चुपके और आनंद जैसी फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
तेरे मेरे मिलन की ये रना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रना, खिलाएगी नया कोई गुल खिलाएगी, सभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
Friends, 1909, birth anniversary of Lester Young, one of the giants of the tenor saxophone. He was the greatest improviser between Coleman Hawkins and Louis Armstrong of the 1920s and Charlie Parker of the 1940s. Young was posthumously elected to the Downbeat Hall of Fame in 1959. Here's to the jazz great, 12th Street Rag Song. August 27, 1965, tributes the Swiss architect, city planner Le Corbusier, who was famous for being one of the pioneers of what is now called modern architecture. His career spanned 5 decades, with his building constructed throughout Central Europe, Russia, North, South America, and last but not the least, our own land. And friends, birth anniversary tributes to Jeff Cook, guitarist and fiddler of popular country band Alabama. Cook formed Alabama in the late 1960s along with his cousins Randy Irvin and Teddy Gentry. They initially called the band Wild Country, changing the name to Alabama in 1977, not long before their first success. 2 years ago, in the month of November, Jeff Cook left us after suffering from Parkinson's disease. A track to remember him. Here goes.
The poster you get.
कुंकड़ी साहित्य के सबसे मजबूत स्तंभ रवींद्र केलकर की आज पुण्यतिथि है। पद्म भूषण से सम्मानित रवींद्र केलकर ने अंग्रेजी, हिंदी, कोंकणी, मराठी और गुजराती भाषा में अनेक कृतियों की रचना की। इस महान हस्ती को वर्ष 2006 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। रवींद्र केलकर की प्रमुख रचनाओं में आमची भास, कुंकड़ीच, बहुभाषिक, भारतांत, भाषांचे, समाजशास्त्र शामिल है। रवींद्र केलकर को 1977 में उनकी पुस्तक हिमालय वंत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
Stay tuned for Samachar Prabhat, the Hindi news bulletin, which is coming up, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day.
Namaskar.